आस्तिक की निगाहें सख्त हो गई थी। उसने आस्तिक को आई लव यू तो कहा, लेकिन उसका नाम नहीं लिया, बल्कि उसे राजा साहब कहा था। इसका मतलब वो आस्तिक से प्यार नहीं करती है, वो तो राजा साहब से भी प्यार नहीं करती है। ये तो आस्तिक का डर है जिसने उसे ये बोलने पर मजबूर किया है। पर आस्तिक के चेहरे पर फिर भी एक संतुष्टि की मुस्कान थी। उसने अरुणिमा का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब कर लिया। उसने अरुणिमा के होठों पर एक प्यारा सा किस कर दिया। अरुणिमा एक पल के लिए डर गई, कहीं आस्तिक गार्डन में तो कुछ करने की नहीं सोच रहा है। लेकिन जब आस्तिक ने अरुणिमा के होठों को चूमकर छोड़ दिया तो अरुणिमा ने थोड़ी राहत की सांस ली। आस्तिक अरुणिमा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ आगे लगे टेबल के पास लेकर आता है, जहां पर एक हार्ट शेप का वेलवेट केक रखा हुआ था। उसे केक को देखकर अरुणिमा हैरान रह जाती है। उसने तो कभी आस्तिक को नहीं बताया था कि उसे वेलवेट केक पसंद है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने आस्तिक को बहुत कुछ नहीं बताया था जो उसे पहले से ही पता था। आस्तिक ने धीरे से अरुणिमा के हाथों पर प्लास्टिक का चाकू पकड़ाया और उसके साथ केक काटा। अरुणिमा धीरे धीरे केक पर चाकू चला रही थी और आस्तिक ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए धीरे धीरे अरुणिमा को देखकर मुस्कुराते हुए गाना शुरू किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफ, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे तो अरुणिमा को इस समय खुश होना चाहिए था, लेकिन उसका मन इस समय रोने को कर रहा था। उसने आज तक जितने भी बर्थडे सेलिब्रेट किए थे वो अपने परिवार के साथ किए थे। मिश्री उसके लिए केक लेकर आती थी और ज्योति, मिश्री और अरुणिमा एक साथ अपने कमरे में बैठकर केक काटा करती थीं। कभी कभी शारदा जी भी इन सब में शामिल होती थीं, लेकिन वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठती थीं। अपनी बहन और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ नाचते गाते और खूब मस्ती करते हुए हर साल उसका जन्मदिन गुजरा करता था। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा जब उसके पास उसकी खुशी बांटने वाला कोई नहीं होगा, और जिसके साथ वो अपनी खुशी बांट रही है उसके साथ तो वो अपनी ज़िंदगी भी नहीं बांटना चाहती थी। केक काटने के बाद आस्तिक ने धीरे से केक का एक टुकड़ा उठाया और अरुणिमा को खिला दिया। अब अरुणिमा को आस्तिक को केक खिलाना था। जाहिर सी बात है, वो आस्तिक के पूछने का इंतज़ार तो नहीं ही करेगी, इसीलिए उसने खुद ही केक का एक टुकड़ा उठाया और आस्तिक की तरफ बढ़ाने लगी। पर आस्तिक ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। अरुणिमा एक पल के लिए डर जाती है। उसने आस्तिक से पूछे बिना ही उसे केक खिलाना चाहा था। क्या इस बात से आस्तिक नाराज हो गया है? यही सोचकर अरुणिमा ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी की। वो आस्तिक को देख रही थी, पर आस्तिक ने अरुणिमा के हाथ से केक लेकर उसे वापस से प्लेट में रखा और धीरे से अरुणिमा की तरफ झुकते हुए कहा, केक तो मैं जरूर खाऊंगा, लेकिन एक्स्ट्रा मीठे के साथ। अरुणिमा कुछ सोच पाती उससे पहले ही आस्तिक ने अपने होंठ अरुणिमा के होठों के बगल में रख दिए, जहां पर थोड़ा सा केक का क्रीम लगा हुआ था। आस्तिक ने अपने होठों से लिख करके उस पूरे क्रीम को अरुणिमा के होठों से साफ कर दिया। अरुणिमा का पूरा बदन कांप गया था। वो हैरान नजरों से आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक अरुणिमा से अलग होता है और मधोशी के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारा ये एक्स्ट्रा मीठा कुछ ज्यादा ही मीठा हो गया है, अब मेरा मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। अरुणिमा आस्तिक के कहे शब्दों का मतलब अच्छी तरह से समझ सकती थी और उसे ना चाहते हुए भी जबरदस्ती अपने चेहरे पर शर्माने वाले भाव लाने पड़े। आस्तिक दोबारा अरुणिमा को अपनी गोद में उठा लेता है और महल के अंदर ले आता है। रात के करीब 2 घंटे तक आस्तिक अरुणिमा के साथ इंटीमेट हो रहा था। हालांकि वो बहुत ज्यादा रूड नहीं था, लेकिन फिर भी आस्तिक का पास होना ही अरुणिमा के लिए हार्श था। रात काफी हो चुकी थी, लगभग सुबह होने वाली थी। आस्तिक सिर्फ ट्राउजर में अपनी आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था और शारदा जी के बारे में सोच रहा था। आज तक वो यही सोच रहा था कि शारदा जी को जो सजा मिल रही है शायद वो काफी नहीं है, वो इससे और ज्यादा की हकदार है। हालांकि आस्तिक को पता चल गया था कि शारदा जी की मानसिक हालत थोड़ी सी बिगड़ गई है, जिस वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए मेंटल असाइलन में रखा गया है। आस्तिक जानता था कि मेंटल असाइलन में जब शारदा जी से क्वेश्चनिंग की जाएगी तो शारदा जी बहुत चालाक हैं और वो सभी सवालों के जवाब देकर ये साबित कर देंगी कि उन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। आस्तिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, कुछ ऐसा जो शायद मेंटल असाइलन वाले टॉर्चर से भी ज्यादा था। अचानक से आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है और वो शारदा जी को याद करते हुए कहता है, सासूमा आपकी तबीयत खराब है, लेकिन मैं आपको बीमार कैसे रहने दे सकता हूँ? मैं तो आपका दामाद हूँ ना, और दामाद होने के नाते मैं आपको इस तरीके से नहीं देख सकता हूँ। मैं जल्दी आपका इलाज करवाऊंगी और आपको पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। शायद मैंने आपको सजा ही गलत दी है। आपको पागलखाने में तड़पा तड़पा कर मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके लिए तो वो मौत होनी चाहिए जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे मेरी माँ मरी थी, मेरी माँ अपनी एक एक सांस के लिए तड़प रही थी, तो तुम्हें भी तो अपनी एक एक सांस के लिए तड़पना होगा। मैं भी तो देखूं कि किस तरीके से जब इंसान हवा पानी के लिए संघर्ष करता है और उसका तड़पते हुए शरीर से जब प्राण निकल रहे होते हैं
तो कैसा लगता है? तुमने बहुत एंजॉय किया था ना जब मेरी मां मर रही थी? ठीक वैसा ही एंजॉयमेंट मुझे भी करना है। आस्तिक अपने मन में यही सब सोच रहा था, तभी उसकी नजर बेड पर सोती हुई अरुणिमा पर गई है, जिसका शरीर सिर्फ एक ब्लैंकेट से ढका हुआ था। लेकिन अरुणिमा की काया को देखकर आस्तिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो अरुणिमा को देखते हुए कहता है, तुम्हें अपनी बेटी की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने उसे पूरी तरह से अपनी कठपुतली बना लिया है जो सिर्फ मेरे इशारे पर चलती है। यकीन मानो तो अरुणिमा का मासूम चेहरा देखकर कभी कभी मेरा मन करता है कि वो इन सब की हकदार नहीं है, लेकिन फिर मैं अपने ही ख्याल को सोचने के लिए खुद को थप्पड़ मारता हूँ। क्योंकि जब मैं अपने भाई बहनों के साथ सड़क पर एक एक रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था, तुम अपने बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी जी रही थी। अगर अरुणिमा की इन सब में कोई गलती नहीं है तो मेरे और मेरे भाई बहनों की भी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती तुम्हारी है शारदा देवी, और तुम्हारी गलती की सजा अब तुम्हारी औलाद भुगतेगी। बस अब तक तो खेल का सीधा पहलू सबको नजर आ रहा था, लेकिन आज से इस खेल का उल्टा पहलू शुरू हो जाएगा। आज तक मैं जो करता आया था वो सबको दिखाई दे रहा था, पर अब से मेरी हर चाल सबके लिए एक पहेली ही होगी, जिसे वो जितना सुलझाना चाहेंगी उतनी ही उलझती चली जाएगी।